अध्याय 40 बिलाम। ये अध्याय गिनती 22 से 24 पर आधारित है। बाशान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात यर्दन को लौटते समय कनान पर तत्काल आक्रमण की तैयारी में इसराइलियों ने यरीहो की तराई के ठीक सामने नदी के किनारे पड़ाव डाला। वे मोआब देश की सीमा पर थे और आक्रमणकारियों की निकटता ने मोआबी लोगों को भयभीत कर दिया। मोआब के लोगों को इसराइल द्वारा छेड़ा नहीं गया था, लेकिन पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं को उन्होंने चिंताजनक पूर्वाभास से देखा था। एमोरियों पर, जिनके सम्मुख वे पीछे हटने को विवश हो गए थे, इब्रियों ने विजय प्राप्त कर ली थी, और जो भूखंड एमोरियों ने मोआब से छीना था अब इसराइल के अधिकार में था। बाशान की सेनाओं ने बादल के स्तंभ में आवृत उस रहस्यमय शक्ति के आगे समर्पण कर दिया था, और असुरों के गढ़ों पर इब्रियों ने अधिकार कर लिया था। मोआबियों ने उन पर आक्रमण का जोखिम उठाने का दुस्साहस नहीं किया। उनके पक्ष में कार्य करने वाली अलौकिक शक्तियों के सामने हथियारों का प्रयोग व्यर्थ था, लेकिन फिरौन की तरह उन्होंने परमेश्वर के काम को निष्फल करने के लिए जादू टोने की शक्ति की सहायता लेने का निश्चय किया। उन्होंने इसराइल को श्राप देने पर विचार किया। मोआबवासी और मिद्यानियों में धर्म और राष्ट्रीयता के बंधन के कारण घनिष्ठ संबंध थे, और मोआब के राजा बालक ने सजातीय लोगों के भय के जागृत किया और इसराइल के विरुद्ध अपनी युक्तियों में उनका सहयोग इस संदेश द्वारा प्राप्त किया। अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। मेसोपोतामिया निवासी बिलाम सूचना के अनुसार अलौकिक शक्तियों का स्वामी था, और उसकी कीर्ति मोआब देश तक पहुंच गई थी। उनकी सहायता के लिए उसे बुलवाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार मोआबी और मिद्यानी पुरनियों के संदेशवाहकों को भेजा गया ताकि वे इसराइल के विरुद्ध उसकी भविष्यवाणी और सम्मोहन की सेवाओं को प्राप्त कर सके। राजदूत तत्काल ही लंबी यात्रा पर निकल पड़े, जो मेसोपोतामिया के मरुस्थल के पार पहाड़ों के ऊपर से होकर की जानी थी, और बिलाम को ढूंढकर उन्होंने उसे राजा का यह संदेश दिया। सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है, और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे ही सामने आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। एक समय था बिलाम एक भला मनुष्य और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसने स्वधर्म त्याग किया था और वह लालचीपन का आदि हो गया था। फिर भी वह सर्वोच्च का दास होने का दावा करता था। वह इसराइल के पक्ष में किए गए परमेश्वर के कार्य से अनभिज्ञ नहीं था, और जब संदेशवाहकों ने अपना संदेश सुनाया वह भली भांति जानता था कि बालक के उपहारों को अस्वीकार करना और उसके दूतों को विदा करना उसका कर्तव्य था। लेकिन उसने प्रलोभन से मन बहलाने का साहस किया और यह घोषणा करते हुए कि वह परमेश्वर से परामर्श किए बिना कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता था, उसने दूतों से रात को वहीं उसके साथ रुकने का आग्रह किया। बिलाम जानता था कि उसका श्राप इसराइल को हानि नहीं पहुंचा सकता था। परमेश्वर उनके पक्ष में था, और जब तक वे उसके प्रति निष्ठावान थे तब तक पृथ्वी या अधोलोक की कोई भी अनिष्टकारी शक्ति उन पर विजयी नहीं हो सकती थी। लेकिन दूतों के इन शब्दों ने उसके घमंड को हवा दी। जिसे तू आशीर्वाद देता है वह धन्य हो जाता है, और जिसे तू श्राप देता है वह श्रापित हो जाता है। भावी प्रतिष्ठा और बहुमूल्य उपहारों ने उसके लालच को उत्तेजित किया, और उसने लालच में प्रदत्त खजाने को ग्रहण कर लिया, और फिर परमेश्वर की इच्छा के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता का दावा करते हुए उसने बालक की अभिलाषाओं के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया। रात्रि के समय परमेश्वर का स्वर्गदूत बिलाम के पास यह संदेश लेकर आया, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। प्रातःकाल बिलाम ने हिचकिचाते हुए दूतों को विदा किया, लेकिन उन्हें नहीं बताया कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा था। लाभ और सम्मान की परिकल्पना का खंडन हो जाने से क्रोधित व चिड़चिड़ा कर बोला, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। दूसरा पत्रस 2:15 में लिखा है, बिलाम ने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। लालच के पाप ने, जिसे परमेश्वर मूर्ति पूजा के तुल्य ठहराता है, उसे अवसरवादी बना दिया, और इस एक अवगुण के माध्यम से शैतान ने उसको पूर्णतया अपने नियंत्रण में कर लिया। इसी के कारण वह विनाश को प्राप्त हुआ। प्रलोभन देने वाला मनुष्य को परमेश्वर की सेवा करने से रोकने के लिए सांसारिक लाभ और सम्मान का लालच देता है। वह उन्हें कहता है कि उनकी अत्याधिक अंतर्विवेकशीलता उन्हें समृद्धि से वंचित रखती है। इस प्रकार बहुत से लोग विशुद्ध सत्यनिष्ठा के मार्ग को छोड़ देने का दुस्साहस करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। एक गलत कदम दूसरे को आसान बना देता है और वे ढीठ होते जाते हैं। एक बार स्वयं को अधिकार की अभिलाषा और लालच के नियंत्रण के प्रति समर्पित कर देने के पश्चात वे बुरे से बुरे कार्य करने लगते हैं। कई स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि किसी सांसारिक लाभ के कारण वे सत्यनिष्ठा को कुछ समय के लिए त्याग सकते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात जब भी वे चाहें अपना रास्ता बदल सकते हैं। ऐसे लोग स्वयं को शैतान के जाल में उलझा रहे हैं और उनका बचकर निकल आना शायद ही कभी होता है। जब दूतों ने भविष्यद्वक्ता के उनके साथ आने की अस्वीकृति की सूचना बालाक को दी, उन्होंने ये नहीं बताया कि परमेश्वर ने उसे मना किया था। इस विचार से कि बिलाम का विलंब मात्र अधिक उपहारों की प्राप्ति के लिए था, राजा ने और हाकिम भेजे जो पहले भेजे गए हाकिमों से अधिक प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उसने बिलाम को और उच्च सम्मानों का आश्वासन दिया और इन हाकिमों को बिलाम की किसी भी शर्त को मान लेने का अधिकार दिया। भविष्यद्वक्ता के लिए बालक का यह संदेश था, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम को दूसरी बार परखा गया। दूतों की सानुरोध याचना के उत्तर में उसने अधिक सत्यनिष्ठा और अंतर्विवेकशीलता का दावा किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि सोने और चांदी की कितनी भी मात्रा उसे परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जाने को प्रेरित नहीं कर सकती। लेकिन राजा के निवेदन को स्वीकार करने की उसकी तीव्र इच्छा थी, और यद्यपि परमेश्वर की इच्छा उसे निश्चित रूप से ज्ञात करा दी गई थी, उसने दूतों से रुकने का आग्रह किया ताकि वह परमेश्वर से और पूछताछ कर पाए, मानो अनंत परमेश्वर कोई मनुष्य था जिसे मनाया जा सकता था। रात्रि के समय प्रभु बिलाम पर प्रकट हुआ और उसने उससे कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। यहां तक परमेश्वर ने बिलाम को अपनी निजी इच्छा का पीछा करने दिया, क्योंकि वह इसी के लिए कृत संकल्प था। वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का इच्छुक नहीं था, वरन उसने अपना रास्ता स्वयं चुना और उसके बाद परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न किया।
वर्तमान समय में भी हजारों हैं जो यही रास्ता अपनाते हैं, यदि उनका कर्तव्य उनके झुकाव के साथ सांजस्यपूर्ण हो तो उन्हें उस कर्तव्य को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से उनके सम्मुख रखा गया है, या तर्क और परिस्थितियों के माध्यम से स्पष्टतया सूचित किया गया है, लेकिन ये प्रमाण उनकी कामनाओं और झुकाव के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए वे प्रायः इन्हें एक तरफ रखकर अपने कर्तव्य के ज्ञान के लिए परमेश्वर के पास जाने की परिकल्पना करते हैं। दिखावटी अंतर्विवेकशीलता के साथ वे प्रकाश के लिए लंबी और आग्रहपूर्ण प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्तियों को वो प्रायः उनकी इच्छाओं के पीछे जाने की और उसका फल भुगतने की अनुमति दे देता है। भजन संहिता 81:11-12 में लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझे न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चलें। जब कोई एक कर्तव्य को स्पष्ट रूप से देखता है तो उसे उस कर्तव्य का पालन न करने देने की प्रार्थना लेकर परमेश्वर के पास जाने की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे दीन होकर और समर्पण की भावना से उस कार्य को करने के लिए ईश्वरीय शक्ति और बुद्धिमत्ता की विनती करनी चाहिए। मुआबी पतित मूर्ति पूजक लोग थे, फिर भी उनको प्राप्त प्रकाश के अनुसार स्वर्ग की दृष्टि में उनका पाप बिलाम के पाप से बड़ा नहीं था। वो परमेश्वर का भविष्य दक्ता होने का दावा करता था। जो भी वो कहता था उसे परमेश्वर के अधिकार से कहा गया माना जाता था। इस कारण जैसा वो चाहे वैसा ही बोलने की उसे अनुमति नहीं दी जा सकती थी, वरन उसे परमेश्वर द्वारा दिया गया संदेश देना था। जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना, ये पवित्र आदेश था। यदि प्रातःकाल दूत बिलाम को बुलाने के लिए आए तो बिलाम को उनके साथ जाने की अनुमति प्राप्त हो गई थी, लेकिन बिलाम के विलंब के कारण खिन्न और एक और अस्वीकृति की अपेक्षा में बिना उसके परामर्श के दूत अपने घरों की ओर यात्रा पर निकल पड़े। अब बालक के निवेदन को स्वीकार करने का बहाना नहीं बचा था, लेकिन बिलाम ने पुरस्कार प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया और जिस पशु की सवारी का वो अभ्यस्त था उसे लेकर वो यात्रा पर निकल पड़ा। उसे डर था कि अभी भी ईश्वरीय अनुमति वापस ली जा सकती थी। वांछित पुरस्कार प्राप्त करने में किसी कारण असफलता के डर से अधीर होकर वो उत्साहपूर्वक आगे बढ़ता गया, लेकिन यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। उस पशु ने पवित्र दूत को देखा जिसे बिलाम नहीं देख पाया, और वो मुख्य मार्ग को छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधही को निर्दयता से मारा कि वो मार्ग पर फिर से आ जाए, लेकिन फिर दीवारों के बीच संकीर्ण गली में दूत प्रकट हुआ और उस डरावनी आकृति से बचने के लिए गधही दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पैर दीवार से दब गया। बिलाम स्वर्गीय हस्तक्षेप से अनजान था और वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। वो क्रोधित हो उठा और गधही को निर्दयता से पीटते हुए उसे आगे बढ़ने को विवश किया। फिर से यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक संकीर्ण स्थान पर खड़ा रहा जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाई ओर, और बेचारी गधही डर से कांपते हुए बिलाम को अपने ऊपर लिए धरती पर बैठ गई। फिर तो बिलाम का क्रोध भड़क उठा और उसने गधही को पहले से भी अधिक निर्दयता से मारा। परमेश्वर ने अब अपना मुंह खोला और गूंगी गधही के माध्यम से मनुष्य की बोली बोल उसने भविष्यद्वक्ता के उस पागलपन को रोका। दूसरा पत्रस 2:16। वो बोली, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। अपनी यात्रा में बाधित होने से क्रोधित बिलाम ने गधही को ऐसे उत्तर दिया मानो वो एक बुद्धिजीवी प्राणी को संबोधित कर रहा हो। क्योंकि तूने मेरा मजाक बनाया, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। यहां एक पेशेवर जादूगर था जो एक संपूर्ण राष्ट्र को उनकी शक्ति को निष्प्रभाव करने के लिए उनको श्रापित करने के रास्ते पर था, जबकि उसमें जिस पशु की वो सवारी कर रहा था उस पशु को मार डालने की भी योग्यता नहीं थी। बिलाम की आंखें अब खुली और उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को हाथ में नंगी तलवार लिए उसे मार डालने को तैयार खड़े देखा। भयभीत होकर वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर उसने दंडवत किया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई है। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसे जीवित छोड़ देता। बिलाम अपने प्राण के संरक्षण के लिए उस बेचारी गधी का जिसे उसने इतनी निर्दयता से मारा था ऋणी था। वह पुरुष जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का दावा करता था, जिसने घोषणा की कि उसकी आंखें खुली थीं और उसने सर्वशक्तिमान का दर्शन देखा, महत्वाकांक्षा और लोलुपता में इतना अंधा हो गया था कि गधी को दृष्टिगोचर परमेश्वर के दूत को वह पहचान नहीं सका। दूसरा कुरंथियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों की बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कितने हैं जो इस प्रकार अंधे हो जाते हैं। पवित्र आज्ञा का उल्लंघन करके वे निषिद्ध मार्गों पर जाते हैं और नहीं जान पाते कि परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत उनके विरुद्ध है। बिलाम की तरह वे उन पर क्रोधित होते हैं जो उनके विनाश को रोकते हैं। अपनी गधी के साथ किए गए व्यवहार के द्वारा बिलाम ने उसे नियंत्रित करने वाली भावना का प्रमाण दिया था। नीतिवचन 12 आयत 10 में लिखा है, धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। बहुत कम इस बात का एहसास करते हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए कि पशुओं का शोषण या उन्हें उपेक्षा के कारण कष्ट उठाने को छोड़ देना पाप है। उसने जिसने मनुष्य की सृष्टि की उसी ने पशुओं को भी बनाया, और भजन संहिता 145 आयत 9 में लिखा है, उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। पशुओं को मनुष्य की सेवा के लिए बनाया गया, लेकिन मनुष्य को उससे बलपूर्वक काम लेकर या कठोर व्यवहार द्वारा कष्ट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य के पाप के कारण सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। रोमियो 8 आयत 22। इस प्रकार दुख और मृत्यु केवल मानव जाति पर ही नहीं वरन पशु पर भी आए। इस प्रकार निश्चित रूप से यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की सृष्टि पर उसकी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा लाए गए कष्ट के भार को बढ़ाने के बजाय कम करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य पशु पर अपना अधिकार समझकर उसका शोषण करता है वह कायर और अत्याचारी शासक है। कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति, चाहे वह हमारे सहवासियों के प्रति हो या जंगली पशुओं के प्रति हो, शैतानी है। कई लोग इस बात को नहीं समझते कि उनकी निर्दयता कभी ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि अबोल व निर्दोष पशु उसे प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन यदि बिलाम की आंखों की तरह इनकी आंखें भी खुल सकती तो वे परमेश्वर के दूत को स्वर्ग के न्यायालय में उनके विरुद्ध प्रमाणित करने साक्षी के रूप में देख पाते। एक अभिलेख ऊपर स्वर्ग को जाता है, और वह दिन आने को है जब परमेश्वर की सृष्टि का शोषण करने वालों के विरुद्ध दंडाज्ञा की घोषणा की जाएगी। जब बिलाम ने परमेश्वर के दूत को देखा वह भयभीत होकर बोला, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा ने उसे अपनी यात्रा पर आगे जाने की अनुमति दी, लेकिन इस समझौते के साथ कि उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द ईश्वरीय प्रभाव से नियंत्रित होंगे। परमेश्वर मोआब को प्रमाण देगा कि इब्री स्वर्ग की सुरक्षा में थे, और ये उसने प्रभावशाली तरीके से किया भी जब उसने मोआबियों को दिखाया कि परमेश्वर की अनुमति के अभाव में इसराइलियों को श्राप देने में भी बिलाम कितना असमर्थ था। बिलाम के पहुंचने की सूचना पाकर मोआब का राजा उसका स्वागत करने अपने परिचारक गण के साथ अपने राज्य की सीमा पर गया। बिलाम को मिलने वाले बहुमूल्य उपहारों को ध्यान में रखते हुए जब उसने बिलाम के विलंब पर आश्चर्य प्रकट किया तो भविष्यद्वक्ता का उत्तर था, देख मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। बिलाम को इस प्रतिबंध का बहुत खेद था। उसे डर था कि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि परमेश्वर की नियंत्रण की शक्ति उस पर थी। बड़े आडंबरपूर्ण प्रदर्शन के साथ राजा और उसके राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों तक लेकर गए जहां से वह इब्री सेना का सर्वेक्षण कर सकता था। उन ऊंची ऊंचाइयों पर खड़े भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पड़ाव पर दृष्टि करते हुए देखो। उन्हीं के इतने निकट हो रही घटनाओं के बारे में इजरायली कितना कम जानते थे। दिन रात परमेश्वर द्वारा की गई सुरक्षा के बारे में कितना सीमित था उनका ज्ञान। कितना धुंधला है मनुष्य का दृष्टिकोण। कितने पीछे हैं वो हर युग में उसकी करुणा और उसके प्रेम को समझने में। यदि वे उनके पक्ष में लगातार प्रयोग की गई परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचान सकते तो क्या उनके हृदय उसके प्रेम के प्रति कृतज्ञता से और उसकी सामर्थ्य और तेजस्विता के विचार पर श्रद्धा से भर नहीं जाते? बिलाम को इब्रियों की बलि की भेंटों का थोड़ा बहुत ज्ञान था, और उसे आशा थी कि उनसे बढ़कर मूल्यवान उपहारों द्वारा वो परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर लेगा और अपने पापमय उद्देश्यों की उपलब्धि को निश्चित कर लेगा। इस प्रकार मूर्ति पूजक मुआबियों की भावनाएं उसके विवेक को नियंत्रित करने लगी थी। उसकी बुद्धिमता मूर्खता हो गई थी, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि धुंधला गई थी और शैतान की शक्ति के आगे समर्पण करके वो स्वयं अंधा हो गया था। बिलाम के निर्देश से 7 वेदियां बनवाई गईं और उसने प्रत्येक वेदी पर बलि की भेंट चढ़ाई। फिर वह परमेश्वर से मिलने एक उच्च स्थान पर गया और उसने परमेश्वर द्वारा प्रकट किया हुआ सब कुछ बालाक को बताने की प्रतिज्ञा की। अपने हाकिमों और अधिकारियों के साथ मुआब का राजा बलि के पशु के पास खड़े रहे और भविष्यद्वक्ता के लौटने की प्रतीक्षा में उत्सुक प्रजा उसके चारों ओर एकत्रित हो गई। आखिरकार वह आया और लोग उन शब्दों के लिए रुके रहे जो घृणित इसराइलियों के पक्ष में प्रयोग की जाने वाली अद्भुत शक्ति को हमेशा के लिए निष्प्रभाव करने वाले थे। बिलाम ने कहा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मुआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलावा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्या श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उन्हें देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब की धूली के किनके को कौन गिन सकता है, या इसराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। बिलाम ने इस बात का अंगीकार किया कि वह इसराइल को श्रापित करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन जो शब्द उसने कहे वे उसके हृदय की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत थे। उसे आशीर्वचन कहने को विवश किया गया था जबकि उसका हृदय श्रापों से भरा था। बिलाम ने इसराइलियों के पड़ाव पर दृष्टि डाली और उनकी समृद्धि के प्रमाण को उसने अचरज देखा। उसे बताया गया था कि वे एक असभ्य अव्यवस्थित समूह है जो देश में घुमक्कड़ झुंडों में फैले हुए है और पड़ोसी देशों के लिए सताहट और भय का कारण है, लेकिन उनका आविर्भाव इसके बिल्कुल विपरीत था। उसने उनकी छावनी का विस्तृत फैलाव और त्रुटिहीन प्रबंधन देखा जिसमें अनुशासन और व्यवस्था हर चीज में दिखाई दे रहे थे। उसे इसराइल के प्रति परमेश्वर की कृपा दृष्टि दिखाई गई और उसके चुने हुए लोगों के तौर पर उसका विशिष्ट चरित्र भी दिखाया गया। उन्हें अन्य जातियों के समस्तर नहीं वरन उनसे बढ़कर ऊंचा उठना था। वो ऐसी जाति थी जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। इन शब्दों के बोले जाने के समय इसराइलियों का कोई स्थायी उपनिवेश नहीं था और उनका विशेष चरित्र, उनका आचरण और उनके रीति रिवाज बिलाम से अपरिचित थे। लेकिन इसराइल के पश्च इतिहास में ये भविष्यवाणी कितने प्रभावशाली ढंग से पूरी हुई। अपने दासत्व के सभी वर्षों के दौरान, विभिन्न देशों में तितर बितर होने के समय से सभी युगों में वे एक विशिष्ट जाति रहे हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के लोग वास्तविक इसराइल भले ही सभी देशों में तितर बितर हैं और पृथ्वी पर यात्री हैं, पर उनकी नागरिकता स्वर्ग में है। बिलाम को केवल राष्ट्र के तौर पर इब्री लोगों का इतिहास ही नहीं दिखाया गया, वरन उसने अंत समय तक परमेश्वर के वास्तविक इसराइल की वृद्धि और समृद्धि को देखा। उसने सर्वोच्च परमेश्वर से प्रेम करने वाले और उसका भय मानने वालों पर उसकी विशेष कृपा दृष्टि को देखा। उसने देखा कि जब वे मृत्यु की परछाई की अंधकारमय घाटी में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का हाथ उन्हें सहारा देता है। उसने उन्हें कब्र में से अनश्वरता, सम्मान और महिमा का ताज पहने बाहर निकलते हुए देखा। उसने बचाए हुए लोगों को नवीनीकृत पृथ्वी की अनश्वर महिमा में आनंदित होते देखा। दृश्य को निहारते हुए वो कहता है, याकूब की धूली के किनके को कौन गिन सकता है, या इसराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। जब उसने प्रत्येक सिर पर महिमा के मुकुट को देखा, प्रत्येक मुखाकृति से हर्ष की अभिव्यक्ति को देखा और पावन प्रसन्नता के कभी ना समाप्त होने वाले जीवन की अपेक्षा की, उसने प्रार्थना की, मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। यदि परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रकाश को ग्रहण करना बिलाम के आचरण में होता तो उसके कहे शब्दों को वो सत्य प्रमाणित करता। वो मुआब के साथ तत्काल ही सारे संबंध समाप्त कर देता। वो परमेश्वर की दया की परिकल्पना नहीं करता, वरन गहरे प्रायश्चित के साथ उसके पास लौट आता। लेकिन बिलाम को अधर्म की मजदूरी प्रिय थी और इसी को प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ निश्चयी था। बालक ने आत्मविश्वास के साथ इज़राइल पर श्राप को क्षति कर अंगमारी की तरह लगने की अपेक्षा की थी, और भविष्यद्वक्ता के उच्चारण पर वो भावुक होकर बोला, तूने मेरे साथ ये क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। बिलाम ने आवश्यकता का आधार बनाने के लिए दावा किया कि ईश्वरीय शक्ति द्वारा उसके होठों से बलपूर्वक निकाले गए शब्द परमेश्वर की इच्छा के लिए अंतर्विवेकशील श्रद्धा से बोले गए थे। उसने उत्तर दिया, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई है, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना नहीं चाहिए? बालक अब अपने उद्देश्यों को त्याग नहीं सकता था। उसने निर्णय लिया कि इब्रियों की विशाल छावनी द्वारा प्रस्तुत भव्य स्मरणीय दृश्य ने बिलाम को इतना डरा दिया था कि वो उनके विरुद्ध अपने जादू टोने का अभ्यास करने का दुस्साहस न कर सका। राजा ने संकल्प किया कि वो भविष्यद्वक्ता को किसी ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां से सेना का छोटा सा भाग ही दिखाई दे। यदि बिलाम को उन्हें पृथक दलों में श्राप देने को मनाया जा सकता तो शीघ्र ही संपूर्ण छावनी विनाश को समर्पित हो सकती थी। पिसगा के सिरे पर दूसरा प्रयत्न किया गया। यहां भी 7 वेदियां बनाई गईं और पहली वेदी के समान इस पर भी वैसी ही भेंटें रखी गईं। राजा और उसके हाकिम बलि के पशु के पास खड़े रहे और बिलाम परमेश्वर से मिलने गया। भविष्यद्वक्ता को फिर से एक पवित्र संदेश दिया गया जिसमें परिवर्तन करने का या जिसे रोके रखने का अधिकार उसके पास नहीं था। जब वह चिंतित प्रत्याशित समूह के सामने प्रकट हुआ, उससे प्रश्न पूछा गया, यहोवा ने क्या कहा है? पहले की तरह उसके उत्तर ने राजा और हाकिमों के हृदय को भय से भर दिया। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देखो, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। इन रहस्यों के उजागर होने से श्रद्धायुक्त भय के साथ बिलाम ने कहा, निश्चय ही कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी करना व्यर्थ है। महान जादूगर ने सम्मोहन की अपनी शक्ति को मुआबियों के अनुरोध के तदानुसार प्रयोग किया था, लेकिन इसी अवसर के संदर्भ में इज़राइल के लिए कहा जाना चाहिए, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। ईश्वरीय सुरक्षा की छत्रछाया में उन पर कोई भी जाति या कोई राज्य, भले ही वह शैतान की संपूर्ण शक्ति से सहायता प्राप्त क्यों न हो, विजयी नहीं हो सकेगा। समस्त संसार को उसके लोगों के लिए किए गए चमत्कारी कार्य पर अचंभा करना चाहिए कि एक मनुष्य जिसने अपने ही मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प कर रखा हो, दिव्य शक्ति से इस प्रकार नियंत्रित हो कि श्रापों के स्थान पर वह उत्कृष्ट और भावुक कविता की भाषा में सबसे प्रिय व अनमोल प्रतिज्ञाओं को उच्चारित करने लगे। और इस समय इज़राइल के प्रति परमेश्वर द्वारा प्रकट की गई कृपा दृष्टि सभी युगों में उसके निष्ठावान और आज्ञाकारी लोगों के लिए उसकी सुरक्षा दे देखभाल का आश्वासन है। जब शैतान परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने, धमकाने या गलत प्रतिनिधित्व करने के लिए दुष्ट मनुष्यों को उकसाने का प्रयत्न करे, यही घटना उनकी स्मृति में लाई जाएगी और यह परमेश्वर में उनके विश्वास और उनके साहस को सबल करेगी। मोआब का राजा खेदित और हतोत्साहित होकर बोला, उनको न तो श्राप देना और न आशीष देना। अभी भी उसके हृदय में थोड़ी सी आशा बची हुई थी और उसने एक और प्रयत्न करने का संकल्प किया। वह बिलाम को पोर पर्वत पर ले गया जहां एक मंदिर उनके देवता बाल की पाश्विक आराधना के लिए समर्पित था। यहां भी पहले की तरह उतनी ही वेदियां बनाई गईं और उतनी ही बलि की भेंटें चढ़ाई गई, लेकिन बिलाम इस परमेश्वर की इच्छा जानने अकेला नहीं गया जैसे कि पहले गया था। उसने जादू टोने का दिखावा नहीं किया, वरन वेदी के निकट खड़े रहकर उसने चारों ओर इज़राइलियों के तंबुओं पर दृष्टि डाली। फिर से परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उसके होठों से ईश्वरीय संदेश निकला, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल, तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वो तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदार। और उसके घरों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाम से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। वह दुबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई श्राप दे वह श्रापित हो। परमेश्वर के लोगों की समृद्धि यहां पर प्रकृति में पाई जाने वाली अत्यंत सुंदर आकृतियों के द्वारा दर्शाई गई है। भविष्यद्वक्ता इज़राइल की तुलना प्रचुर पैदावार से ढकी हुई उपजाऊ घाटियों से, चिरस्थायी जल के सोतों से तरित प्रफुल्लित वाटिकाओं से, भव्य देवदार और सुगंधित चंदन वृक्षों से करता है। भव्य देवदार की आकृति बाइबल में पाई जाने वाली सबसे सुंदर और उचित आकृति है। लेबनान का देवदार पूरब वासियों द्वारा सम्मानीय माना जाता था। वृक्षों की जिस श्रेणी का ये सदस्य है वह पृथ्वी पर जहां कहीं भी मनुष्य गया है पाई जाती है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर उष्णकटिबंध तक भीषण गर्मी में आनंद मग्न, फिर भी शीत का सामना करते हुए, नदी के किनारे प्रचुरता में लहराते हुए और सूखी प्यासी बंजर भूमि पर मीनार के समान ऊंचा खड़े हुए, वे फलते फूलते रहते हैं। अपनी जड़ों को वे पर्वतों की चट्टानों में गहराई तक रोप देते हैं और तूफान को चुनौती देते हुए दृढ़ता से खड़े रहते हैं। शीत के श्वास लेने पर जब अन्य सब नष्ट हो जाता है, इनके पत्ते हरे और ताजे रहते हैं। अन्य सभी वृक्षों से श्रेष्ठतर लेबनान के देवदार अपनी मजबूती, अपनी स्थिरता, अपनी अक्षय ताकत के लिए प्रख्यात है, और इन्हें उनके प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिनका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कुलुस्सियों 3:31। भजन संहिता में लिखा है, धर्मी लोग देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ईश्वर के हाथ ने देवदार को जंगल के राजा के तौर पर ऊंचा उठाया है। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी नहीं थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। यहेजकेल 31:8। परमेश्वर की बारी का कोई भी वृक्ष उसके तुल्य न था। देवदार को बार बार राजसी गौरव के प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाया गया है, और पवित्र शास्त्र में धर्मी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका प्रयोग बताता है कि स्वर्ग किस प्रकार उनका सम्मान करता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। बिलाम ने भविष्यवाणी की कि इज़राइल का राजा अगाग से अधिक शक्तिशाली और महानतम होगा। यह नाम अमालेकियों के राजाओं को दिया गया था जो उस समय एक शक्तिशाली राष्ट्र थे, लेकिन यदि इज़राइल परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहते तो वे अपने सभी शत्रुओं को वश में कर सकते थे। इज़राइल का राजा परमेश्वर का पुत्र था, और एक दिन पृथ्वी पर उसके सिंहासन को स्थापित होना था, और उसका अधिकार सभी सांसारिक राज्यों से ऊंचा होना था। भविष्यद्वक्ता की बात सुनकर बालक निराशा, डर और क्रोध से अभिभूत हो गया। वह रुष्ट इस कारण था कि जब सब कुछ उसके विरुद्ध नियत था, बिलाम उसे अनुकूल प्रत्युत्तर का कम से कम प्रोत्साहन दे सकता था। उसने भविष्यद्वक्ता के भ्रमकारी मध्यमार्ग को घृणा की दृष्टि से देखा। अत्यंत क्रोधित होकर उसने कहा, अब तू अपने स्थान पर भाग जा, मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। उत्तर यह था कि राजा को आगाह कर दिया गया था कि बिलाम वही संदेश दे सकता था जो उसे परमेश्वर द्वारा दिए गए थे। अपने लोगों के पास लौटने से पहले बिलाम ने संसार के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के शत्रुओं के निर्णायक विनाश की उत्कृष्ट और सुंदर भविष्यवाणी की। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। और उसने केनियों, एमुलेक, एदोम और मोआब के सर्वनाश की भविष्यवाणी करते हुए अपनी बात का समापन किया, और इस प्रकार मोआबी राजा के लिए आशा की कोई किरण नहीं बची।
उन्नति और धन की अपेक्षा में निराश राजा की घृणा का पात्र, और यह जानते हुए कि उसने परमेश्वर को खेदित किया था,
बिलाम अपने स्वचयनित अभियान से लौटा। उसके घर पहुंचने पर परमेश्वर के आत्मा की नियंत्रणकारी शक्ति ने उसे छोड़ दिया और उसका लालच, जो अभी तक केवल रोक कर रखा गया था, जीत गया। बालक द्वारा प्रस्तावित पारितोषिक को पाने के लिए बिलाम किसी भी साधन का प्रयोग करने को तैयार था। बिलाम जानता था कि इसराइलियों की समृद्धि उनकी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता पर निर्भर थी और उन्हें छल कपट से पाप करवाने के अलावा पराजित करने का और कोई उपाय नहीं था। उसने निर्णय लिया कि इसराइल को श्रापित ठहराने के लिए वह मुआबियों को अनुसरण किए जाने वाले तरीके का परामर्श देगा और राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त करेगा। वह तत्काल मुआब देश लौटा और राजा के सम्मुख अपनी योजना प्रस्तुत की। मुआबियों को स्वयं विश्वास था कि जब तक इसराइली परमेश्वर के वफादार थे, परमेश्वर उनकी ढाल होगा। बिलाम द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार इसराइलियों को मूर्ति पूजा के लिए फुसलाकर परमेश्वर से दूर किया जा सकता था। यदि उन्हें बाल और अश्तीरेत की व्यभिचारी उपासना में व्यस्त किया जाए तो उनका सर्वशक्तिमान रखवाला उनका शत्रु हो जाएगा और वे उनके पड़ोसी रणकुशल राष्ट्रों के शिकार हो जाएंगे। यह योजना राजा द्वारा तत्परता से स्वीकार कर ली गई और बिलाम स्वयं इसके क्रियान्वयन में सहयोग करने के लिए रुका रहा। बिलाम ने अपनी शैतानी युक्ति की सफलता देखी। उसने देखा कि परमेश्वर का प्रकोप उसके लोगों पर पड़ा और उसकी दंडाज्ञा से हजारों मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन जिस ईश्वरीय न्याय ने पाप को दंडित किया, उसी ने प्रलोभन देने वालों को दंड से बच निकलने की अनुमति नहीं दी। इसराइल के मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध में बिलाम मारा गया। उसे अपने अंत के निकट होने का पूर्वाभास हुआ था जब उसने कहा, मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। लेकिन उसने धर्मी के जीवन को जीना नहीं चुना और उसका अंत परमेश्वर के शत्रुओं के साथ निर्धारित किया गया। बिलाम का अंत यहूदा के अंत से मिलता जुलता था और उनके आचरण में भी बहुत समानता थी। इन दोनों व्यक्तियों ने परमेश्वर और धन संपत्ति की शुश्रूषा को एक करने का प्रयत्न किया और इन्हें कड़ी हार का सामना करना पड़ा। बिलाम ने सच्चे परमेश्वर को स्वीकार किया और उसकी सेवा टहल करने का दावा किया। यहूदा ने यीशु के मसीह होने में विश्वास किया और उसके अनुयायियों के साथ मिल गया, लेकिन बिलाम यहोवा की सेवा टहल को सांसारिक लाभ और सम्मान की उपलब्धि के लिए पैरों का पत्थर बनाना चाहता था और ऐसा करने में असफल होने पर वह लड़खड़ाया, गिरा और टूट गया। यहूदा मसीह के साथ उसके संबंध द्वारा उस सांसारिक राज्य में पदोन्नति और धन संपत्ति सुरक्षित करना चाहता था, जिसे, जैसा कि उसे विश्वास था, मसीह स्थापित करने वाला था। उसकी आशाओं की असफलता उसके धर्म त्याग और विनाश का कारण बनी। बिलाम और यहूदा दोनों को ही बहुत प्रकाश प्राप्त था और उनके पास विशेषाधिकार भी थे, लेकिन एक पाप ने, जिसे वे संजोए हुए थे, उनके संपूर्ण चरित्र को विषैला कर दिया और उनके विनाश का कारण बना। हृदय में किसी भी मसीह विरोधी लक्षण को बसने की अनुमति देना खतरनाक है। संजोए रखा गया एक पाप धीरे धीरे चरित्र का पतन कर देता है और उसकी सभी शिष्ट क्षमताओं को पापमय अभिलाषाओं के अधीनस्थ कर देता है। अंतरात्मा पर से एक सुरक्षाकर्मी हटाने से, एक बुरी आदत में पड़ने से, कर्तव्य की मांग की एक उपेक्षा आत्मा की सुरक्षा को खंडित कर देती है और शैतान के अंदर आने के लिए और हमें पथभ्रष्ट करने के लिए द्वार खोल देती है। एकमात्र सुरक्षित मार्ग यही है कि दाऊद की तरह निष्ठावान हृदय से हम प्रतिदिन प्रार्थनाएं करें, मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। भजन संहिता 17 आयत 5।